शंकराय नमः।
यात्रा द्वादश ज्योतिर्लिंग की, आध्यात्म और धर्म को समर्पित उस धरती पर जिसे सारे विश्व में सर्वोपरि समझा जाता है, ये है भारतवर्ष। समस्त विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां देवताओं और अवतारों को पूजा जाता है। लोक परलोक के बीच मानव का एक अदृश्य संपर्क सूत्र है, ईश्वर, जो यत्र तत्र सर्वत्र है विद्यमान, तन मन में विराजमान, मंदिरों में मूर्तिमान, इस सृष्टि का भगवान, मन में ईश दर्शन की ज्योत जलाए हम भी चल पड़े एक पावन यात्रा पर, देवाधिदेव महादेव के विभिन्न कल्याणकारी द्वादश ज्योतिर्लिंग स्वरूपों के दर्शनों के लिए। जो रुद्र भी हैं और भोले भी, क्रोधित हो जाएं तो उनका तांडव सृष्टि को समाप्त कर दे, परंतु भक्त के प्रेम और भक्ति के आगे सब कुछ भूल जाएं। वैसे तो समस्त विश्व में शिवलिंग व्याप्त हैं, परंतु इन सभी में उन 12 शिवलिंगों को ही प्रधान माना गया है जो कि भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों में स्थापित हैं।
सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जैन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गृश्रुणेशं शिवालये।
12 ज्योतिर्लिंगों की पावन यात्रा का शुभारंभ हमने किया नाशिक के पास त्र्यंबकेश्वर में आयोजित हो रहे अर्धकुंभ के अवसर पर।
सह्याद्रि पार्श्वे पितटे रमन्तं गोदावरी तीर पवित्र देशे यद्दर्शनात् पातक जात नाश प्रजायते त्र्यंबक मीश मीरे।
इस मंदिर का आज का जो स्वरूप है वो 18वीं शताब्दी में पेशवा बालाजी बाजीराव के प्रयत्नों का सुफल है। काले पत्थरों से नागरा शिल्प में बना ये मंदिर अत्यंत मनोहारी है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि गौतम ने गौ हत्या के पाप की निवृत्ति के लिए शिव जी की पूजा अर्चना की। भगवान शंकर ने ऋषि गौतम से वर मांगने को कहा। तो ऋषि गौतम ने शिवजी से गंगा देकर संसार का उपकार करने का वर मांगा। शिवजी ने गंगा जी का तत्वरूप अवशिष्ट जल मुनि को प्रदान किया। ऋषि गौतम ने प्राप्त गंगा से अपने को गौ हत्या के पाप से मुक्त करने की प्रार्थना की। गंगा जी ने ऋषि गौतम को पवित्र करने के उपरांत स्वर्ग चले जाने का निश्चय प्रकट किया, परंतु शिवजी ने कलयुग पर्यंत उसे धरती तल पर ही रहने का आदेश दिया। तो गंगा ने उनसे प्रार्थना की कि फिर आप भी पार्वती सहित पृथ्वी तल पर निवास करें। तब संसार के उपकारार्थ भगवान शिव ने गंगा की ये प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहीं पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। आइए शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूपों की श्रृंखला में अब चलें महाराष्ट्र के ही भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शनों के लिए।
यो दाकिनी शाकिनी का समाजे, निषेव्यमानः पिशिताशनैश्च, सदैव भीमादिपद प्रसिद्धम्। तं शंकरं भक्तहितं नमामि।
शिल्पकला के नागरा रूप में निर्मित ये नया और पुराना मंदिर अपनी गरिमा को 18वीं शताब्दी से आज तक उसी तरह संजोए है। इस मंदिर के शिखर का निर्माण नाना फडणवीस ने कराया था। ऐसा कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी इस मंदिर में शिवजी की पूजा के लिए आते थे। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के संबंध में किंवदंती है कि कुंभकर्ण और कर्कटी से उत्पन्न भीम नामक एक अति विशाल राक्षस था। इंद्र विष्णु समेत सभी देवताओं को जीत कर अपने अधीन कर लिया। इसके उपरांत उसने शिवजी के महान भक्त कामरूपेश्वर का सर्वस्व हरण करके उसे कारागार में डाल दिया। कामरूपेश्वर कारागार में भी विधि पूर्वक और नियमित रूप से शिव पूजन करता रहा और उनकी पत्नी भी शिवाराधना में निरत रही। कारागार में राजा के पास पहुंचकर उससे शिव के स्थान पर स्वयं भीम को पूजने को कहने लगा। कामरूपेश्वर के प्रतिरोध करने पर भीम ने तलवार से पार्थिव लिंग पर प्रहार किया। उसका खड्ग वहां तक पहुंचा भी ना था कि शिव जी वहां प्रकट हो गए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंततः वहां आए नारद जी के अनुरोध पर शिव जी ने फूंक मारकर उस दुष्ट भीम को भस्म कर दिया और इस प्रकार शिव जी लोक कल्याण की दृष्टि से वहां भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग में उपस्थित हुए। तो ये थी हमारी एक और ज्योतिर्लिंग यात्रा, श्री भीमाशंकर। द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शनों की पावन यात्रा का हमारा अगला पड़ाव है श्री बैद्यनाथ महादेव।
पूर्वोत्तरे पारलिकाभिधाने सदा शिवं तं गिरिजासमेतम् सुरासुराराधित पाद पद्मम् श्रीवैद्यनाथं सततं नमः।
ये ज्योतिर्लिंग सती के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ऐसा माना गया है कि दक्ष यज्ञ के समय जब सती अग्नि में कूदी थी तब विष्णु के चक्र से कटी उनकी अधजली देह से छिटक कर उनका हृदय भाग यहां वैद्यनाथ में गिरा था।
ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्वलांगं।
ये थी यात्रा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग महादेव की।
गणेशाय नमः। ओम भद्रं कर्णेव श्रुणयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवे।
द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शनों की पावन यात्रा का हमारा अगला पड़ाव है श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग।
आमर्द सौम्ये नगरे चरम्ये विभूषितांगं विविधै भोगै सद्भुक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकम् श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये।
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव की। आइए अब करते हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन।
एलापुरी रम्य शिवालयेस्मिन् सम्मूलसंतं त्रिजगद्वरेण्यं वंदे महोदारतरस्वभावम् सदाशिवं तं घृष्णेश्वराख्यं
गुजरात राज्य के प्रभास पाटन क्षेत्र में समुद्र तट पर वेरावल से 10 किलोमीटर दूर स्थित है श्री सोमनाथ मंदिर।
सौराष्ट्र देशे वसुधावकाशे ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृतावतारं तं शरणं प्रपद्ये
इस पवित्र तीर्थ का उल्लेख ऋग्वेद के स्कंद पुराण और महाभारत में भी मिलता है। ये मंदिर अनेक शताब्दियों से भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बना हुआ है। 1025 ईस्वी में गजनी के महमूद ने आक्रमण किया और इसे लूट लिया। 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति अलफ खान ने इसे फिर ध्वस्त किया। 1390, 1490, 1530 और अंत में औरंगजेब ने 1701 में यहां विध्वंस मचाया। लेकिन ये मंदिर जितनी बार टूटा उतनी ही बार इसे फिर पुनर्निर्मित किया गया। अंततः 1783 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर के पास ही एक और नया मंदिर बनवाया। 1951 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने ब्रह्मशिला पर शिव ज्योतिर्लिंग को पुनर्स्थापित किया। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की परम पावन यात्रा का हमारा अगला पड़ाव श्री महाकालेश्वर।
अवंतिकायां विहितावतारम् मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थम् वंदे महाकालमहं सुरेशम्।
मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर से 60 किलोमीटर दूर उज्जैन नगर में शिप्रा के तट पर स्थित हैं श्री महाकालेश्वर। स्कंद पुराण में इस मंदिर की कीर्ति का विस्तृत वर्णन है। ज्योतिर्लिंग यहां गर्भगृह में स्थित है। तीनों तरफ श्री गणेश, पार्वती एवं कार्तिकेय की ठोस चांदी से बनी प्रतिमा तथा गर्भगृह के ऊपर 100 किलो चांदी से बने रुद्र यंत्र की प्रतिष्ठा की गई है। श्री महाकालेश्वर की सुबह 4 बजे की भस्म आरती को श्रद्धालु अति महत्वपूर्ण मानते हैं। यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि यहाँ चढ़ाए हुए प्रसाद को दोबारा चढ़ाया जाता है। यही नहीं, बेलपत्र को धोकर पुनः प्रयोग में लाया जाता है। भारतवर्ष की इस पुनीत आध्यात्मिक तीर्थ पीठ अवंतिका यानी उज्जैन नगरी में श्री महाकालेश्वर के अतिरिक्त सहस्त्रों देवी देवताओं के दर्शन सुलभ हैं। ब्रह्मांड में सर्व पूज्य माने गए तीन लिंगों में से भगवान महाकाल भूलोक में प्रधान है। उज्जैन के प्रथम और शाश्वत शासक भी महाराजाधिराज श्री महाकाल ही हैं। दक्षिणमुखी होने से इनका विशेष तांत्रिक महत्व है। ये कालचक्र के प्रवर्तक हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले श्री महाकालेश्वर के दर्शन से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। पर्व का आयोजन होता है। उज्जैन के स्नान का महत्व इसलिए विशेष होता है क्योंकि यहां पर सिंहस्थ और कुंभ दोनों पर्व मिलते हैं, तब ये 10 योग होते हैं। ये थी एक पावन यात्रा श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन की। द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा के अगले क्रम में हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। उज्जैन से हम बढ़ चले मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के उत्तर तट पर एक छोटा सा टापू श्री ओंकारेश्वर।
कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मांधातृपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमेव
इंदौर और खंडवा शहर से 77 किलोमीटर की दूरी पर इस टापू का आकार ओम की तरह है। पुराणों में इसे वैदूर्य मणि पर्वत कहते हैं। इस जगह पर दो मंदिर हैं, ओंकारेश्वर और अमरेश्वर।
शिवाय नमः। शंकराय नमः। ॐ सदाशिवाय नमः।
श्रद्धालुओं के लिए ओंकारेश्वर मंदिर अत्यंत आकर्षण और श्रद्धा का पावन स्थल है। मंदिर और उसका परम पावन गर्भगृह जहां ज्योतिर्लिंग है, एक प्राचीन छोटा मंदिर है। हर सोमवार को सोने की तीन मुख वाली भगवान ओमकार की प्रतिमा को पालकी में स्थापित कर शोभा यात्रा के लिए निकाला जाता है। इसे सोमवार सवारी कहते हैं।
ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पो।
ये थी परम पूज्य देवाधिदेव शिव के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा। ये है उत्तर प्रदेश की अति पावन भूमि बनारस, काशी, वाराणसी। यहां स्थित हैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्वेश्वर।
सानंद मानंद वने वसंतम आनंदकंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये।
वाराणसी नगर वाराण और असी दो नदियों के मध्य बसा है, इसीलिए वाराणसी कहलाता है। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग या काशी विश्वनाथ महादेव जो भी कहें, रूप तो उस एक शंकर का ही है। 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर के प्रयासों से इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। हजारों लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के प्रतीक भगवान विश्वेश्वर का यहां प्रतिदिन गंगाजल से अभिषेक होता है। बनारस भारत की शक्तिपीठों में से एक है। इस काशी नगरी के बारे में ऐसी मान्यता है कि शिव जी ने काशी को अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्युलोक में स्थापित कर दिया, जो ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर भी नष्ट नहीं होती, और प्रलय में शिव जी उसे पुनः अपने त्रिशूल पर धारण किए रहते हैं।
नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः
काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा स्थित रहता है। कहीं भी गति न पाने वाले प्राणियों की वाराणसी पुरी में गति हो जाती है। महापुण्यदायक पंचकोशी नगरी, कोटि कोटि धारतम पातकों की नाशिका और संजोय नामक उत्तम मुक्ति की दायिका है। यही कारण है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा प्रशासित इस नगरी में देवता भी मृत्यु की कामना करते हैं। भीतर से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी रुद्र की प्रार्थना पर पार्वती सहित विश्वनाथ भगवान शंकर ने इस नगरी को अपना स्थायी निवास बनाया है। काशी नगरी मोक्ष की प्रकाशिका और ज्ञानदात्री है। यहाँ के निवासी किसी भी तीर्थादि की यात्रा किए बिना मुक्ति के भागी हो जाते हैं। ये था महात्म्य काशी विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ का। द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा में अब हमारा गंतव्य है श्री केदारेश्वर। पूर्व के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तरांचल राज्य के गढ़वाल जिले में हिमालय की केदार चोटी पर स्थित हैं श्री केदारेश्वर।
हिमाद्रि पार्श्वे पितटे रमन्तम् संपूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे। सुरासुरैर्यक्षमहोरगात्यै केदारसंज्ञं शिवमीशमीन्द्रे।
ऋषिकेश से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। महाभारत के वन पर्व के वर्णनानुसार केदार कुंड में स्नान करने पर समस्त पापों का क्षय हो जाता है। ऐसा भी उल्लेख है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन यहां दर्शन अर्चन करने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को स्वर्ग की उपलब्धि हुआ करती है।
शिवाय नमः। ॐ शंकराय नमः। ॐ सदा शिवाय नमः।
केदारनाथ मंदिर के भीतर पृथ्वी के आंतरिक भाग से आविर्भूत एक विशाल वृत्ताकार शिलापिंड है, जिसे केदारनाथ की मूर्ति के नाम से पूजा जाता है। ये शिलापिंड भैंसे के पिछले धड़ की आकृति के समान पूरी तरह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। तीर्थयात्री इसका स्पर्श करते हैं, क्योंकि यहां पर मूर्ति को स्पर्श करने का विधान है। मंदिर के मध्य में पीतल का छोटा नंदी खड़ा है। दक्षिण द्वार पर पीतल का विशाल नंदी खड़ा है। केदारनाथ लिंग के समक्ष जो भी पाषाणमयी प्रतिमाएं हैं वो सभी पंचमुखी हैं और सर्वदा प्रतिमाएं वस्त्राभूषणों से अलंकृत रहती हैं। मंदिर के पीछे एक अमृत कुंड है जो कि बहुत गहरा है। इसके अंदर दो शिवलिंग स्थित हैं। यहां पर पहले भाग में हंस कुंड और दूसरे भाग में रेतस कुंड है।
रेतस कुंड में माथा टेक कर तीन बार भक्तगण आचमन करते हैं, क्योंकि इस विधि से मुक्ति लाभ प्राप्त होता है। अत्यधिक प्राचीन होने के बाद भी इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। इसके कलश पर स्वर्ण जल चढ़ा हुआ है, साथ ही लाल रंग की पताका और त्रिशूल शोभायमान है। मंदिर के पट तभी खुलते हैं जबकि सूर्य मेष राशि में संचार करता है, और जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करता है तब पट बंद हो जाते हैं। ये थी यात्रा श्री केदारेश्वर की। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की परम पावन यात्रा का हमारा अगला पड़ाव श्री शैले मल्लिकार्जुनम।
श्री शैल श्रृंगे विविध प्रसंगे शेषाद्रि श्रृंगेपि सदा वसंतम्। तमर्जुनम् मल्लिकपूर्वमेनम् नमामि संसार समुद्र सेतुम्।
आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में श्री शैल पर्वत पर हैदराबाद से 250 किलोमीटर की दूरी पर पवित्र कृष्ण वेणी के तट पर श्री शैल क्षेत्र स्थित है। विजयनगर शिल्पकला के इस प्राचीनतम अप्रतिम मंदिर का स्वरूप किले की मानिंद है। श्री शैल क्षेत्र का द्वितीय नाम कैलाश क्षेत्र है।
पद्मासीनं समन्ता सुतममरगणै व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं प्रातःकाले।
कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश पर लौटे तो नारद जी से श्री गणेश के विवाह का वृत्तांत सुनकर रुष्ट हो गए, और माता पिता के मना करने पर भी उन्हें प्रणाम करके क्रौंच पर्वत पर चले गए। पुत्र वियोग से व्याकुल पार्वती माता शिव जी के साथ कार्तिकेय की खोज में वहां पहुंची। माता पिता के आगमन की सूचना मिली तो वो क्रौंच पर्वत को छोड़कर और तीन योजन दूर चले गए। पुत्र के वहां न मिलने पर वात्सल्य से व्यथित शिव पार्वती ने अन्य पर्वतों की यात्रा का निश्चय किया, परंतु अपनी इस यात्रा के स्मरण स्वरूप उन्होंने यहां अपनी ज्योति स्थापित कर दी। उसी दिन से मल्लिकार्जुन क्षेत्र के नाम से वो ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव कहलाया। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के दिन शिवजी और पूर्णिमा के दिन पार्वती माता अब भी यहां आते हैं। श्री रामेश्वरम, ये है भगवान श्री राम के लंका विजय से वापसी से जुड़ा भगवान शंकर का दैदीप्यमान अलौकिक ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वरम।
श्री ताम्रपर्णी जलराशि योगे निबद्ध सेतुं निशिबिल्व पत्रे श्रीरामचंद्रेण समर्चितंतम् रामेश्वराख्यं सततं नमामि।
दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रदेश में चेन्नई से 700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री रामेश्वरम। यहीं पर एक और शिवलिंग स्थित है विश्वनाथर। कहा जाता है कि इसे श्री हनुमान ने बनारस से यहां लाकर स्थापित किया था। इसे काशी लिंगम या हनुमान लिंगम भी कहा जाता है। रामनाथ स्वामी की प्रार्थना से पहले इस लिंगम की पूजा अर्चना करने की मान्यता है।
नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं।
15 एकड़ क्षेत्र में फैले श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर में गोपुरम, विशाल दीवारें और नंदी मूर्ति है। यहां 4000 फीट का लंबा गलियारा है जिसमें 4000 खंभे हैं। ग्रेनाइट के उकेरे हुए खंभे ऊंचे उठे हुए छोटे परकोटों पर खड़े हुए हैं। यहां के पूर्वी राजगोपुरम की ऊंचाई 126 फीट 9 स्तरों में है। यहां स्थित नंदी मूर्ति 18 फीट ऊंची और 22 फीट लंबी है। श्री रामेश्वरम में 36 तीर्थम अर्थात जल स्रोत हैं, जिसमें से 22 मंदिर परिसर में स्थित हैं। इनके जल को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। इनमें स्नान करना अति शुभ और निरोगकारी मानते हैं। इस मंदिर में प्रतिदिन 6 आरती पूजा होती हैं। पहली आरती सुबह 5 बजे होती है और प्रति शुक्रवार को विशेष आरती आयोजित होती है। रामेश्वर महादेव का जो व्यक्ति दर्शन पूजन करता है, रामेश्वरम शिवलिंग पर दिव्य गंगा जल चढ़ाता है, वो जीवन मुक्त होकर अंत में कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की ये परम पावन यात्रा, जिसे अपने पाप मुक्ति अभियान के रूप में आरंभ करना प्रत्येक प्राणी मात्र का उद्देश्य रहता है। यदि वो अपने संपूर्ण जीवन काल में एक बार भी इस यात्रा को पूर्ण कर लेता है तो निश्चित ही अपने समस्त जन्मों के संचित पापों से मुक्त होकर वो मोक्ष को प्राप्त होता है।
Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya.